لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه عز وجل: يوما ندعو كل أناس بإمامهم. وقال سبحانه في مورد آخر: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات محمد وعلى ہماری گفتگو غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کے ضمن میں اس مقام پر پہنچی کہ جب بھی کسی انسان کے ذمے کسی سے متعلق کوئی ذمہ داری عائد ہو جائے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ یقینی طور پر کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا ریلیشن اس شخص کے جس کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے اور وہ ذات کے جس کے لیے وہ ذمہ داری آ رہی ہے، ان کے درمیان یقینی طور پر کوئی تعلق اور ریلیشن اور رشتہ ہے کہ جس کی بنا پر اس کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. اور ہم نے مثالوں کے ذریعے سے اس مطلب کو اپنے بچوں کے لیے سمجھانے کی کوشش کی، اور بات ہماری اس مقام تک پہنچی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اور ہمارے زمانے کے امام کے درمیان ہمارا کیا رشتہ اور کیا ریلیشن ہے، کہ جب یہ رشتہ یہ ریلیشن سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک رشتے کی ریلیشن کی نوعیت پتہ نہ چلے ذمہ داری کا احساس نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمیں اجمالی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ آیا یہ ہماری بہن ہے یا ہماری خالہ ہے یا ہماری ماں ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو اجمالی طور پر کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی ریلیشن ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ریلیشن یہ رشتہ کس نوعیت کا ہے، نہیں معلوم کہ بہن کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے یا ماں کا رشتہ ہے، تو اس صورت میں ذمہ داری کی ادائیگی ممکن نہیں. چونکہ بہن کی ذمہ داری ایک مختلف انداز سے ہے, خالہ کی ذمہ داری, اس کی تکلیف, اس کی وظیفہ, اس کی ذمہ داری کی نوعیت مختلف ہے, اور ماں کے جو تمام رشتوں میں سب سے زیادہ عظیم, سب سے زیادہ قابل احترام رشتہ ہے, اگر یہ رشتہ معلوم نہ ہو تو ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر ہمیں اجمالی طور پر اختصار اور ایک ابہام کے طریقے سے ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ ایک رشتہ ہے, وہ کیا رشتہ ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کا تعلق کیسا ہے, اس کی ریلیشن شپ کتنی محکم ہے, اگر یہ معلوم نہ ہو تو وظیفہ اور ذمہ داری کما حق کہو, جیسی کی ذمہ داری کا حق ہے ویسی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ جان لے, ہم یہ پہچان لے کہ ہمارا ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ, ہمارا اپنے آئمہ کے ساتھ بالعموم اور بالخصوص کہ جن کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جن کے وجود کے سبب ہمارا وجود ہے, جب تک ہمیں اس ریلیشن کے نوعیت ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو, ہم صحیح طریقے سے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ہیں. اگر محسن احسان کرنے والا شخص اگر ہم پر کوئی احسان کر رہا ہو اور اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا احسان کی نوعیت, اس کے احسان کی کیفیت, اس نے کس قسم کا احسان ہم پر کیا, تو جب تک ہمیں احسان کی نوعیت معلوم نہ ہو, احسان کی کیفیت معلوم نہ ہو, احسان کی کمیت معلوم نہ ہو, ہم محسن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہم محسن کی ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پر اس کے احسان کرنے کی وجہ سے جو ہمارے کاندھوں پر اس کے احسان کرنے کی وجہ سے ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پر آ گئی, ہم اس کا کما حق کہو ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ہیں. لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ محسن کا احسان کس نوعیت کا ہے, اس کی کیفیت کیسی ہے, اس کی کمیت کیسی ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس نقطے کو بیان کرنا ضروری سمجھا کہ قبل اس کے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو بیان کریں کہ جس کو علماء نے بیان کیا, اگرچہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے, اس کی تعداد اور کمیت بہت زیادہ ہے, نہ تمام کمیت کے اعتبار سے بیان ہو سکتی ہے وہ ساری ذمہ داریاں کہ جن کو علماء کرام نے بیان کیا, اور نہ ہی کیفیت کے طریقے کہ کس کیفیت پر وہ ذمہ داری ادا ہونی چاہیے, وہ بھی ہم کما حق کہو اس ممبر سے بیان نہیں کر سکتے ہیں, نہ ہم میں وہ صلاحیت ہے, کیونکہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اس کی کمیت تو چلے شاید بیان کر سکے کہ وہ ذمہ داری جو ہماری ہمارے زمانے کے امام سے تعلق رکھتی ہے, شاید کمیت کے اعتبار سے, اگرچہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس کمیت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن کم از کم کیفیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کی کیفیت کس نوعیت کی ہونی چاہیے, اس کے لیے ضروری کہ انسان دل میں کتنا عقیدہ رکھتا ہے, دل میں اس کیفیت کو کتنا احساس کرتا ہے. لہذا یہ ناقص شخص کہ جس کے جو آپ کے سامنے یہ خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا, یقینی طور پر وہ کما حق کہو کیفیت کو کہ جو ہماری ذمہ داری اپنے زمانے کے امام سے تعلق رکھتی ہے, کما حق کہو کیفیت کو میں ڈیلیور نہیں کر سکتا ہوں, وہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں, وہ آپ تک میں نہیں پہنچا سکتا ہوں, بس علماء کرام نے جو اس کو بیان کیا اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو اس نقطے پر پہنچی کہ ہمارے زمانے کا امام بالخصوص, اگرچہ یہ خصوصیت جو بیان کی گئی یہ تمام آئمہ سے ریلیٹڈ ہے, تمام آئمہ سے متعلق ہے, لیکن بالخصوص جن کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے, جن کا ہم پر حق ہے, بالخصوص ان کا حق جو پہلا ہم نے کل بیان کیا وہ حق وجود ہے, یعنی ہمارا وجود ان کے سبب سے ہے, جس کی تفصیل ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی. دوسرا حق, حق بقائے دنیا, کہ جس کی ایک حد تک ہم نے تفصیل بیان کی, لیکن ایک مزید روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پہنچانی ہے, اگرچہ متعدد روایت اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ کل ہم نے یہ بیان کیا کہ زمین و آسمان کا وجود, یہ زمین ہمارے سر پر نہیں گر پڑتا, یہ آسمان ہمارے سر پر نہیں گر پڑتا, یہ زمین ہم کو نگل نہیں لیتی, اس کی وجہ ہمارے امام کا وجود ہے. ये हमारे जमाने का इमाम के का वजूद है कि जिसकी वजह से आसमान अपनी जगह पर मुस्तकर है और जमीन हमको निगल नहीं लेती है। इसी सिलसिले में एक रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, नबी इरशाद फरमाते हैं, रिवायत तूलानी है, नबी अकरम ने तमाम आइमा का एक एक करके नाम लिया। हमारे पास कई सारी ऐसी रिवायात हैं कि जिसमें आइमा मुतादिद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने 12 इमामों की फहरिस्त बयान की है। मुख्तलिफ आइमा से ये फहरिस्त आई है। इस रिवायत ये रिवायत नबी अकरम से मनकूल है। नबी अकरम एक एक इमाम का नाम लेते हैं, इमाम जमाना तक तमाम आइमा का नाम लेते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरी इत्रत है, मेरी हुज्जत है तमाम लोगों पर। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि इनकी इताअत मेरी इताअत और इनकी मासियत मेरी मासियत, इनमें और मुझ में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं। जो शख्स इनकी इताअत करेगा गोया ऐसा है जैसे उसने मेरी इताअत की, और अगर कोई इनकी नाफरमानी करे, अगर कोई इनकी मासियत करे, अगर कोई शख्स इनके अहकाम की हुक्म उदूली करे, तो ये मासियत इनकी मासियत फकत नहीं होगी, ये हुक्म उदूली फकत इनकी हुक्म उदूली नहीं होगी बल्कि मेरी मासियत होगी। उसके बाद नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं कि ये बड़ा हसास मरहला है, ये इंतहाई अहम मसला है कि जिस पर मुतअद्दिद मकामात पर मैं एक हद तक रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। मासूम इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इनका इनकार करे या इनमें से किसी एक का भी इनकार करे, इससे हमें पता चले कि मौलाए कायनात की विलायत से लेकर इमाम जमाना 12 इमामों की विलायत का अकीदा और ईमान रखना हर इंसान के ऊपर वाजिब है। जो भी बनी नौए इंसान है, उनके ऊपर वाजिब है कि 12 इमामों की वलायत का इकरार करता हो, 12 इमामों की इमामत का एतराफ करता हो, उनके सिलसिले में उसके दिल में ईमान और अकीदा होना जरूरी है। इमाम नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मौलाए कायनात इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसे काजिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली उन्नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अलैहिमुस्सलाम, अरवाहुल आलमीन लहुन फिदा, कि तमाम आलमीन के अरवाह इन पर फिदा हो जाए, ये 12 इमाम ये मैंने अपने बच्चों के लिए इनके नाम लिए कि हम पर जरूरी है कि हम हर इमाम के बारे में मारिफत रखते हो, हर इमाम के बारे में हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा अकीदा होना चाहिए कि ये वसीय रसूल है, ये इमाम मासूम है और ये खुदावंद मुताल की तरफ से हुज्जत है। इनकी विलायत के बारे में हर इंसान के ऊपर एतराफ करना जरूरी है। अगर कोई शख्स मौलाए कायनात की विलायत का एतराफ करता हो, उनकी विलायत पर और इन पर ईमान लेकर आए और बाकी 11 इमामों की विलायत को अगर कबूल ना करता हो, तो मौलाए कायनात की विलायत उसे कोई भी फायदा नहीं देगी। अभी रुतबे के एतबार से यकीनी तौर पर कोई बहस नहीं चल रही है, वरना तो अगर कोई शख्स अगर तौहीद पर ईमान लेकर आए और रसूल को ना मानता हो और आइमा अलैहिस्सलाम को ना मानता हो, तो इसी तरीके से उनकी तौहीद उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स खुदावंद मुताल के ऊपर ईमान लाता हो, उसकी तौहीद का एतराफ करता हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता हो और आखिरी नबी के उनवान से ईमान रखता हो और बाकी आइमा की विलायत को अगर ना मानता हो, तो ये दो अकीदे, तौहीद के बारे में अकीदा और रिसालत के बारे में अकीदा, ये उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला। ये हमारे उलमा का, हमारे मजहब तशय्यों का अकीदा है, जिसमें किसी आलिम ने भी इख्तलाफ नहीं किया, जिसे कहते हैं इस्तेलाह में जरूरियात मजहब। ये यकीनी तौर पर आप कहेंगे ये बच्चों वाली बातें मैंने शुरू कर दी, ये जरूरी है कि ये ईमान, ये अकीदा, ये एतकाद जो हमारा है वो हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों तक मुंतकिल होना चाहिए। ये हमारे बच्चों तक मुंतकिल होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मिंबर से हमेशा फलसफी और मुश्किल गुफ्तगू की जाए कि जिसकी बिना पर हमारा जवान और हमारा बच्चा महरूम रह जाए समझने से। लिहाजा ये वो अकायद है कि जो बुनियादी अकायद है कि जिसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, किसी आलिम ने न मामूली से मामूली किसी आलिम ने न किसी मर्जे वक्त और आलम ने इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं किया। इसी तरीके से अगर कोई शख्स खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत और मौलाए कायनात की विलायत को मानता हो और बाकी 11 को खुदा ना खास्ता उनकी विलायत के ऊपर अगर अकीदा ना रखता हो तो ये तीन अकीदे भी उसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। मैं बिलखुसूस जिस नुक्ते पर ले जाना चाहता हूं, इसी तरीके से अगर कोई शख्स अगर कोई मजहब अगर 6 इमामों तक इमामत को कबूल करता हो और बाकी 6 इमामों की इमामत को अगर वो कबूल ना करता हो तो हमारे अकीदे के लिहाज से उसकी कयामत के दिन किसी किस्म की कोई नजात नहीं होगी। कयामत के दिन उसकी किसी किस्म की कोई नजात नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत बाकी 11 इमामों की विलायत के ऊपर ईमान रखता हो, यही 11 इमाम की जिसको आपकी खिदमत में हमने बयान किया, 11 का अदद नहीं चाहिए खुदावंद मुताल को, 12 का अदद खुदावंद मुताल को नहीं चाहिए जैसा कि गैरों ने कर दिया क्योंकि ये 12 का अकीदा वो अकीदा है कि जो गैरों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये 12 का अदद वो अदद है कि जो गैरों की किताबों में भी मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल रिवायात जो इन्होंने भी मानी है, लेकिन उन्होंने 12 के अदद को अपनी ही तरफ से बना लिया। खुदावंद मुताल को ये 12 का अदद नहीं चाहिए, ये 12 हस्तियां चाहिए, ये 12 हस्तियां चाहिए कि इन 12 हस्तियों से इंसान का ईमान, इंसान इनकी विलायत और इनकी इमामत का एतकाद रखता हो, खुदावंद मुताल को ये चाहिए। लिहाजा अगर कोई शख्स खुदा की वहदानियत, रसूल की रिसालत और 11 आइमा की विलायत को मानता हो और एक आखिरी इमाम की अगर विलायत का अगर मुनकिर हो जाए तो खुदावंद मुताल के हुक्म के मुताबिक, रसूल की रिवायत के मुताबिक जो शख्स इनमें से किसी एक का इनकार करता है, कोई एक का इनकार करता है, गोया ऐसे है जैसे उसने मुझे मेरा इनकार किया, और जिसने रसूल का इनकार किया उसने खुदा का इनकार किया, उसको कयामत के दिन ना उसका ये ईमान कोई नफा देने वाला है ना उसकी इबादत कोई फायदा पहुंचाने वाली है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस रिवायत तुलानी रिवायत और ये तुलानी मुकदमा बयान करने का मकसद वो दो जुमले हैं जो इस रिवायत के इख्तिताम पर है। मासूम इरशाद नबी अकरम इस रिवायत के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये 12 इमाम कि जिनके नाम रिवायत में बयान किए गए और ये बयान किया कि इनकी इताअत मेरी इताअत, इनकी मासियत मेरी मासियत है, और नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं कि इन हस्तियों की वजह से, अगरचे इस जुमले में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है और जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल है, लेकिन इस रिवायत में नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं कि इन हस्तियों की वजह से आसमान अपनी जगह पर मुस्तकर है और जमीन अपनी जगह पर महफूज है। लिहाजा अब यहां पर अब हमारे जमाने का एक और हक हमारी गर्दन पर आ गया, एक हक के वजूद था जो कल हमने बयान किया, एक है बकाए दुनिया का हक, एक और हक जो उलमाए कराम ने बयान किया वो है हक के रिश्तेदारी। किनसे रिश्तेदारी का हक, ये तो हम साबित ही कर रहे हैं कि हमसे क्या रिश्ता है, हमसे क्या रिलेशन है, कौन सी रिश्तेदारी, ये वो रिश्तेदारी है कि जिसको कुरान ने इस अंदाज से बयान किया, ये वो हक के रिश्तेदारी है कि जो रिश्तेदारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बनी हुई है, वो रिश्तेदारी जो नबी अकरम से इनकी है, ये रिश्तेदारी हम पर एक हक लेकर आ रही है। ये किसने बयान किया, ये किसी रिवायत ने बयान नहीं किया बल्कि आए कुरानी मशहूर और मारूफ आए मवद्दत जिसे कहते हैं। अपने बच्चों के लिए एक जुमला कह दूं कि बाज ऐसी आयात है जिसके मखसूस नाम है, बाज ऐसी आयात है जिनके मखसूस नाम है, आयत अथीर जो तहारत वाली आयत है, इन्नमा यूरीदो वाली जो आयत है, आय विलायत आयत का नाम है, आय विलायत जिस तरीके से आयतल कुर्सी हम जो कहते हैं एक मखसूस अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल्हय्युल क्यूम वाली जो आयत है उसका, उस आयत का नाम क्या है, आयतल कुर्सी। इसी तरीके से एक है आयत आय विलायत, इन्नमा वलीकुम वाली आयत, इसी तरीके से एक आयत जिसमें नबी अकरम से इनकी रिश्तेदारी, खुदावंद मुताल ने एक जिम्मेदारी जो हर मुसलमान के ऊपर आयत की है, वो कौन सी आए? आए मवद्दत। आए मवद्दत कौन सी है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अलमवद्दत फिल क़ुरबा। कुल ला असअलुकुम, कह दो मुसलमानों से कि मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। ये कौन सा अजर है? क्या रसूल ने इनको दिया कि जिसके मुकाबले में खुद नबी अकरम इनसे अजर का मुतालबा करने का हक रखते हैं? हक रखते हैं, मुतालबा नहीं किया किसी अजर का। कुरान ने कहा कुल ला असअलुकुम, कह दो इन लोगों से कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई अजर नहीं चाहता। ये कौन सा अजर? किसमें होता है अजर? मामले में होता है, डील में होता है। जब मैं आपको कोई चीज बेचूं तो इसके मुकाबले में इसकी जो कीमत है वो मेरा इस माल के मुकाबले में अजर है। यहां पर कुरान की चीज के मुकाबले में नबी अकरम को मुस्तहिक अजर करार दे रहा है। ये कौन सी चीज है? आयत ने इसको बयान नहीं किया। ये नबी अकरम की वो हिदायत है, नबी अकरम की वो हिदायत है। खुदावंद मुताल ने इंसानों को जो खल किया है, खुदावंद मुताल ने इंसानों को जो खल किया है, इस खल के नतीजे में खुदावंद मुताल ने इंसान को नेमतें दी है। खुदावंद मुताल ने नेमतें दी, हमारा वजूद सबसे बड़ी नेमत, हमारा लिबास, हमारी गिज़ा, हमारे वालदेन, हमारे रिश्तेदार और दुनिया भर की नेमतें जिससे हम इस्तेफादा करते रहते हैं, ये सारी नेमतें नेमत इलाही हैं। तो खुदावंद मुताल ने ये सारी नेमतें दी हैं। इनमें जो सबसे अजीम तरीन नेमत खुदावंद मुताल ने हमें खल्क इसलिए नहीं किया कि ताकि हमें खल्क कर दे, खुदावंद मुताल ने हमें जो मादी नेमतें दी इसलिए नहीं दी कि हम उससे लुत्फ अंदोज हो, इससे हम इस्तेफादा करें और बस सलाम खुदा हाफिज। नहीं, ये वजूद ये नेमतें तो मुकदमा है, अजबाब है किसी चीज के लिए। हमारा वजूद, ये नेमतें, ये सारी चीजें सबब है किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए मुकदमा है। वरना खुदावंद मुताल सिर्फ हमारे वजूद को वजूद देना नहीं चाहता है, खुदावंद मुताल फकत हमें इन नेमतों से लुत्फ अंदोज नहीं करवाना चाहता है, इसलिए कि मोमिनीन के लिए जो नेमत हकीकी वो तो जन्नत में है। जो नेमत हकीकी है वो तो जन्नत में है, वो तो मरने के बाद है। ये जो दुनियावी नेमतें हैं, खुदावंद मुताल ने इन नेमतों के लिए हमको खल्क नहीं किया बल्कि इन नेमतों को खल्क किया है किसी अजीम मकसद के लिए। वो अजीम मकसद क्या है? वो अजीम मकसद कि जिसका जो खिलकत इंसानी का मकसद है, जो तमाम नेमतों का मकसद है, वो है हिदायत इंसान, हिदायत इंसान, इंसान की हिदायत। ये है खुदावंद मुताल का मकसूद इस खल्क करने का। खुदावंद मुताल ने जो खल्क किया है तो मकसूद किया है, मतलूब किया है। खुदावंद मुताल क्या चाहता है? क्या ये इंसान दुनिया में आए 30 साल 40 साल 50 साल 100 साल जिंदगी करे, इन नेमतों से फायदा उठाए और बस सलाम खुदा हाफिज? नहीं, ये तो खुदावंद मुताल ने फकत मुकदमा असबाब करार दिया, इनके जरिए से कहीं पहुंचना है। वो क्या है? वो है कमाल इंसानी, वो है कमाल इंसानी, वो है हिदायत इंसानियत, वो इंसान की हिदायत हो। ये है जिस मकसद के लिए खुदावंद मुताल ने इंसान को खल किया। अब ये वजूद, अब ये नेमतें, ये हो गई सारी मुकदमा, सारे हो गए असबाब। जो असली मकसद है वो क्या है? वो हिदायत। ये हिदायत कौन लेकर आया? हिदायत कौन लेकर आया? ये हिदायत हमारे आखिरी नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। जब हम दुनिया की मामूली से खरीदो फरोख्त में हमने लिबास खरीदा जो खुदावंद मुताल की एक नेमत है, उसके मुकाबले में हमने अजर दिया। हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी, उसके मुकाबले में हमने दुकानदार को अजर दिया। और बाकी सारी नेमतों की फहरिस्त खुद ही आप बना लें। तो ये तो सारे जो मामले हैं, ये जो सारी नेमतें हैं, जो दर हकीकत खुदा का मकसूद नहीं है, खुदावंद मुताल को ये नहीं चाहिए, ये तो तुम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिसको तुम अपने लिए जरूरी करार दो वो खरीदो। तो इंसान हर नेमत इलाही को जो खरीदता है उसके मुकाबले में इंसान अजर देता है, लेकिन ये तो है सारी नेमत जो जाहिरी नेमत है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि ये तो मकसूद इलाही नहीं है, ये तो असल मकसद के लिए मुकदमा है। तो जिस मुकदमे में इंसान के लिए अजर करार दे, इंसान बाज़ोकत इन नेमतों के लिए कितना खर्च करता है, इन नेमतों के लिए कितना खर्च करता है, बाज़ोकत इन नेमतों के लिए इंसान अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देता है। ऐसा ही है ना, हम सारी जिंदगी कमाने में हमने सारी जिंदगी खर्च कर ली, ना हमें खुदा की इबादत का ख्याल है, ना खुदा की मारिफत को हासिल करने का ख्याल है, ना रसूल की मारिफत हासिल करने का हमें कोई शौक है, ना इमाम आइमा अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करने का कोई शौक है। जो मकसद है असली उसको हमने फरामोश कर दिया, हमने सारी जिंदगी वक्फ करार दी इस बात के लिए कि हमें जिंदगी गुजारनी है। तो हमने तो अपनी जिंदगी की नेमतों के लिए अपनी सारी जिंदगी को अजर करार दिया कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो मतलूब असासी, वो मतलूब और मकसूद हकीकी जिसके लिए खुदावंद मुताल ने खल किया, उसकी कीमत इंसान क्या तसव्वुर कर सकता है। ये चीजें कि जो मकसूद हकीकी नहीं है, जो मतलूब हकीकी नहीं है, ये खुदावंद मुताल को नहीं चाहिए, इसके लिए इंसान ने अपने आप को वक्फ कर दिया। अब आप सोचिए कि वो नेमत उज़्मा, उज़्मा कहते सबसे बड़ा, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत इलाही, इंसान उसके लिए अपने जहन में अगर अजर करार देना चाहे तो क्या अजर हो सकता है। हमने तो अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी इन दुनियावी मादी दुनिया के लिए, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं कि हम किसी चीज को अजर के उन्वान से खुदावंद मुताल की बारगाह में पेश करें। खुदावंद मुताल इस आयत कुरानी में इरशाद फरमाता है, कुल ला असलुकुम, हर डील, हर मामला, हर खरीदो फरोख में अजर होता है। जब आपको दुनियावी नेमत मिली आपने अजर दिया, जितना हो सका आपने अजर दे दिया। जब आपको नेमत उज़्मा जो सबसे बड़ी नेमत मिली, जब उसकी अजर की बारी आई तो खुदावंद मुताल ने कहा कुल, कह दो, इसलिए कि खुदावंद मुताल उस अजीम चीज को, उस हिदायत के मुकाबले में, उस तालीम नबवी, वो नबी अकरम की तालीम जो हिदायत की तालीम है, जो तस्किए की तालीम है, जो इंसान को मादियात से मानवियात के तरफ ले जाने वाली तालीम है, जब उसके अजर की बारी आई, जो अहम तरीन इंसान तसव्वुर कर सकता है, जाहिर तसव्वुर करे कि ये जो भी अजर होगा वो हमारी अकल से मावरा अजर होगा, क्योंकि हम तो मादी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, हमारे जहनों में तो इन्हीं चीजों को हम अजर करार देते हैं। कुरान ने कहा कुल ला असलुकुम, ए रसूल कह दो, हर चीज के लिए जो तुम्हें अजर करार देना है करार दो, लेकिन चूंकि हिदायत का काम हमारे जिम्मे था लिहाजा अब अजर भी हम तुमसे तलब करेंगे जिस चीज को हम अजर करार दें। देखिए ये भी एक मामले की एक तरीकेकार होता है, खरीदो फरोख में जो बेचने वाला अजर करार दे, इंसान उसी चीज को अजर के उन्वान से देता है। आपका दिल चाह रहा है कि अगर 100 रुपए की चीज 80 रुपए में खरीदे तो ये आपका दिल नहीं चलेगा, बल्कि जो बेचने वाला है, जो देने वाला है, उसको ये देखना है कि वो ये कितने में बेच रहा है। अब खुदावंद मुताल जो मकसूद हकीकी है, जो मतलूब असासी है, उसके अजर के लिए क्या चीज करार दे रहा है, कह दो कि मुझे किसी किस्म का कोई अजर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक ही चीज चाहिए, एक ही अजर चाहिए, वो है मेरे कुर्बा, मेरे अहले बैत की मवद्दत चाहिए। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे अहले बैत की मवद्दत, मोहब्बत अहले बैत, ये कोई मामूली चीज नहीं है। आपने मुलाहिदा फरमाए कि किस चीज की अजर, किस चीज की कीमत मुकर्रर की जा रही है, मवद्दत अहले कुर्बा। ये मवद्दत अहले कुर्बा ये तीसरा हक कि जो हमारा हमारे जमाने के इमाम से ये तीसरा रिलेशन, बकाए वजूद, बकाए दुनिया और नबी अकरम से रिश्तेदारी। चौथा रिलेशन, चौथा ताल्लुक वो दुनियावी सारी नेमतें, दुनियावी सारी नेमतें। मुतअद्दिद रिवायात इस सिलसिले में हमें मिलती है कि जिसका खुलासा यह है कि आइमा अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ रिवायतों में इरशाद फरमाते हैं कि अगर हमारा वजूद ना होता, हमारा वजूद ना होता तो दरख्त सब्जा ना देता, अगर हमारा वजूद ना होता तो ये नहरें ना बहती, अगर हमारा वजूद ना होता तो ये दरख्त फल ना देते, अगर हमारा वजूद ना होता तो ये नेमत इलाही जिसको इंसान तसव्वुर कर सकता है, जिसको इंसान तसव्वुर कर सकता है, इंसान जिससे इस्तेफादा करता है। अब आज के जमाने में गाड़ियां ले लें, आज के जमाने में टेलीविजन ले लें, आज के जमाने में ये एयर कंडीशन ले लें, आज के जमाने में ये आज के घर ले लें, आज के जमाने में आज के पंखे ले लें। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जितनी भी नेमत इलाही को इस्तेफादा करता है उससे लुत्फानंदोज होता है। अगर हमारा वजूद ना होता, अगर हमारा वजूद ना होता तो ये नेमत इलाही तुम्हें नसीब ना होती। जितनी भी नेमत इलाही है, देखिए एक यही जिम्मेदारी, देखिए हमारी जो गुफ्तगू चल रही है गैबत इमाम हमारी जिम्मेदारी, यही हमारी गुफ्तगू, हम अपने मौजू से बिल्कुल नहीं हटे, क्योंकि एक अहम तरीन जिम्मेदारी है कि मारिफत इमाम होनी चाहिए और ये मारिफत इमाम ही में बयान कर रहा हूं, ये जो रिलेशन बयान करो ये मारिफत इमाम ही है। अब चूंकि जिम्मी तौर पर यहां पर एक बात आ गई जो शायद उलमाए कराम ने कहीं बयान नहीं की, लेकिन हमारी अक्ल ये कहती है, हमारा जमीर ये कहता है, हमारा जमीर ये कहता है कि जब ये चौथा रिलेशन बयान किया जा रहा है, वो चौथा रिलेशन क्या बना, वो चौथा रिलेशन ये बना कि जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी नेमतें हैं ये नेमतें हमारा वजूद सबब बना कि तुम उससे फायदा उठा रहे हो, तुम्हें नसीब हुई। अब हमारा जमीर ये कहता है, हमारा दिल ये कहता है, हमारी मोहब्बत अहले बैत ये तकाजा करती है कि इंसान तन्हाई में ये सोचे कि कितनी नेमतें हैं जिनसे इंसान लुत्फानंदोज हो रहा है, कितनी नेमतें हैं जिनसे इंसान फायदा उठा रहा है, कितने फवाइद दुनिया के जिसे हम फायदे उठा रहे हैं। इंसान तसव्वुर में सोचे और अपने आइमा का शुक्रिया अदा करे, अपने आइमा का शुक्रिया अदा करे। आइमा को हमारा थैंक्स नहीं चाहिए, आइमा को हमारा शुक्रिया नहीं चाहिए, आइमा का शुक्रिया यह है कि हम वैसे बन जाए जैसे इमाम चाहते हैं, यह आइमा का शुक्रिया है, आइमा इसी से हमसे राजी है। यह चौथा हक। पांचवा हक, हक के पिदरी, बाप का हक। वो बाप जो नसब के जरिए से इंसान जिससे इस दुनिया में आया वो उसका हकीकी बाप है, यानी हकीकी बाप यानी ये दुनियावी एतबार से बाप है। लेकिन रिवायतों में इमाम को बयान किया गया कि इमाम अपने मानने वालों के बाप हुआ करते हैं। मासूम की रिवायत है, अल इमामो अल अनीसुर रफीक। देखिए इमाम कितना अपने मानने वालों से मोहब्बत करते हैं, इंसान वाकई ये तसव्वुर करे। इन बाज नौजवान ये सवाल करते हैं कि हम किस तरीके गुनाह से बचे, हम गुनाह से बचना चाहते हैं, हम किस तरीके से गुनाह से बचे। इंसान फकत इसी चीज को जहन में लेकर आए कि मासूम इरशाद फरमाते अल इमामो अल अनीसु रफीक, इमाम तुम्हारा दोस्त है, तुमसे मोहब्बत करने वाला है। वल वालिदु शफीक, और इमाम तुमसे शफकत करने वाला बाप है। ये कितना हक हो गया, पांचवा हक, पांचवा रिलेशन अपने इमाम के साथ, बाप का हक, वो हमारे बाप हैं। और एक मशहूर और मारूफ रिवायत है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंकूल है, मशहूर और मारूफ रिवायत है, नबी अकरम इरशाद फरमाते कि अना व अली अब्बा हाजिल उम्मा। अगर कि इस बाप के हक को गस किया, लेकिन नबी अकरम इरशाद फरमाते अना व अली अब्बा हाजिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। ये नबी अकरम की मशहूर मारूफ रिवायत है। लेकिन मासूम की एक और रिवायत जिसको आपके सामने हमने तिलावत किया कि मासूम इरशाद फरमाते कि सारे के सारे इमाम الانیس الرفیق والوالد الشفیق ہے. امام شفقت اور مہربانی کرنے والے باپ ہوا کرتے ہیں. اور چھٹا حق وہ کیا ہے؟ وہ ہے آقا اور غلام والا حق. وہ ریلیشن ہے آقا اور بندے والا, آقا اور بندے کا جو ریلیشن ہوتا ہے. نبی اکرم کی حدیث ہے جو حدیث غدیر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے, حدیث غدیر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. اور معصوم ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں, پہلے اس روایت کو بیان کر دوں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ وہ روایت معصوم ہے, یہ غدیر والی روایت نہیں ہے. غدیر والی روایت تو مشہور و معروف ہمارے بچوں کے لیے, ہم دوبارہ اس کی تلاوت کا بھی شرف مل جائے گا ہمیں اور اپنے بچوں تک بھی یہ حدیث غدیر پہنچ جائے. جس طرح آیات کے مختلف نام ہیں اسی طرح احادیث کے بھی مختلف نام ہیں, جن میں سے ایک حدیث حدیث غدیر ہے, جیسے ایک حدیث حدیث ثقلین ہے, انی تارک و فکم ثقلین والی. جس طرح آیات مختلف آیات کے مختلف نام ہیں اسی طرح بعض احادیث کے نام ہیں, جیسے حدیث ثقلین, حدیث دار, حدیث منزلت. اسی طریقے سے ایک حدیث حدیث غدیر, حدیث غدیر جو مشہور و معروف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من کنت مولا فہذا علی المولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. دو منٹ کے لیے آپ کا وقت لوں گا کیونکہ میں بزرگوں سے زیادہ میں اپنے بچوں اور جوانوں تک ان حقائق کو پہنچانا چاہتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں ان بزرگوں کے سے کہ جو جن کے لیے شاید تکراری گفتگو, آپس تو نہیں کہوں گا, بہرحال فرامین اہل بیت علیہم السلام ہیں, جتنا انسان سنے اس کی نورانیت انسان تک پہنچتی رہتی ہے. یہ جو روایت ہے من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ وہ روایت نہیں ہے کہ جس کو صرف اہل تشیع کے علماء نے فقط بیان کیا, نہیں, بلکہ یہ وہ روایت ہے کہ جو اہل تشیع نے بھی جس کو بیان کیا, اور اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت کے یہ روایت موجود ہے. آخر مذہب تشیع کا باقی مذہب کے ساتھ آخر اختلاف کیا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہمارے ہم مذہب والوں کے ساتھ ہے. میں اپنے جوانوں تک یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ جھگڑا کیا ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اب یہ روایت ہے اور یہ روایت اہل سنت کے علماء نے بھی بیان کیا اور متعدد علماء نے بیان کیا, اور کوئی سند کا کوئی اختلاف نہیں, تمام متعصب سے متعصب علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا, صرف یہاں پر گفتگو اور بحث یہ ہے کہ اس روایت کا کیا معنی کیا جائے. من کنت مولا فہذا علی المولا, اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. یہ تو لفظ مولا کو بعین ہی اسی جو عربی میں تھا ہم اردو میں بھی لے کر آ گئے, لیکن سارا جھگڑا اس میں ہے کہ یہ مولا کا معنی کیا ہے. وہ لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے من کنت مولا, یعنی میں جس کا ناصر اور مدد کرنے والا, علی بھی اس کا ناصر اور مدد کرنے والا ہے. کیونکہ مولا کے 20 سے 22 معنی کیے گئے ہیں, مولا کے 20 سے 22 معنی کیے گئے ہیں, اور ہمارے علماء کے خدمات میں سے ایک عظیم ترین خدمت, ہمارے علماء کی خدمات میں سے ایک عظیم ترین خدمت. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کے شیعہ افراد کی, جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے علماء کا کام اور رول کیا ہے اسلام کی تبلیغ میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہے, سگریٹ اگر پیتا ہے تو سگریٹ جلا لیتا ہے, اگر سگریٹ نہیں پیتا تو چائے پیتا رہتا ہے, اور یہ 2-4-5 کتابیں جب موقع مل گیا کھول لی, اس کے بعد آرام کرتا رہتا ہے. ہمارے علماء نے اپنی ساری زندگی, کاش وقت ہوتا تو میں 4-5-10-12 بڑے بڑے علماء کا مختصر کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں, شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آج کا مجتہد اور آج تک کے مرجع کا، ہر مجتہد اور ہر مرجع نے اپنا خون پسینا، یہ میں فقط محاورتی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فقط میں ممبری انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اور اپنے احساس سے جس چیز کو میں نے ملاحظہ کیا اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے مجتہدین اور ہمارے علماء کرام نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی ساری زندگی، یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، 1% بھی مبالغہ نہیں ہے، اگر 1% بھی مبالغہ، خدا کا عذاب مجھ پہ ابھی نازل ہو، ایک ہمارا ہر مرجے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ علوم اہل بیت علیہ السلام محفوظ رہنے چاہیے ساری زندگی. اب ظاہر ہے علوم اہل بیت علیہ السلام یہ کوئی معمولی سا علم نہیں ہے، علم و کیمسٹ و فزکس و میتھمیٹک کی طرح نہیں کہ ایک انسان متعدد علوم پر ایک وقت میں اس پر کمانڈ حاصل کر لے، یہ علوم اہل بیت علیہ السلام علوم الہی ہے، علوم الہی ہے. معصوم کی حدیث ہے کہ حدیث ہونا، ہماری حدیث لا یتحمل، اس کو کوئی اٹھ برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل نہ مومن کہ جس کا امتحان لیا گیا ہو، ہماری حدیث اتنی مشکل ہے. حدیث ہونا صعب المستصعب، ہماری حدیث اتنی مشکل ہے کہ جس کو نہ ملک مقرب اس کو برداشت کر سکتا ہے نہ نبی مرسل اس کو تحمل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مومن جس کے دل کا خداوند متعال نے امتحان لے لیا، اتنی سخت حدیث ہے. اگرچہ بعض حدیث میں آیا کہ ہمارے ماننے والے ہماری حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ہمارے علماء شیخ کلینی سے لے کر آج تک سارے علماء نے اپنی ساری زندگی، ساری لفظ ساری پر زور دیا جائے، ساری زندگی وقف کر دیا علوم اہل بیت کی تشہیر و تبلیغ کے لیے، نام چونکہ عظیم عالم کا لیا علیہ الرحمہ، اگرچہ علیہم الرحمہ، خدا ان سب پر رحمت نازل کرے، شیخ یعقوب کلینی وہ عظیم انسان کہ جنہوں نے 20 سال فقط تبلیغ میں نہیں، 20 سال اپنے گھر کو خیر باد کر دیا. آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے مومنین ہیں جو اپنے گھر کو خیر باد کر کے کہاں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کچھ رفاہی زندگی گزر جائے، ہماری کچھ آسائش کے ساتھ، کچھ آسانی کے ساتھ، کچھ اچھی زندگی گزر جائے، چاہے وہ زحمت اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ جدائی کے جو گھر والوں اور شخص کے درمیان کی جدائی ہے. انسان بعض اوقات انسان عجیب، واقعی اس کی انسان کے عقل پر بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا کو، اس اپنے وطن کو ترک کر کر گیا امریکہ، اس وطن کو ترک کر کے گیا دبئی، کیوں؟ تاکہ بچوں کے لیے، اپنے لیے کمائے. کمائے کیوں؟ انسان کماتا اس لیے کہ تاکہ اچھی زندگی گزار سکے. ارے اولاد کی اور گھر والوں کی اور شوہر کی جو جدائی کی جو زحمات ہے، یہی ناقابل تصور ہے، لیکن بہرحال انسان بعض اوقات اس مرحلے پر بھی پہنچ جاتا ہے. تو ہم تو اپنے وطن کو ترک کرتے ہیں تاکہ اچھی زندگی گزر جائے، ہمارے خیال میں ہم اچھی زندگی گزار لیں، یہ ہمارا طریقہ کار. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ دین کو خیر باد، اور اس کے باوجود وہ علماء کرام کے جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے علوم اہل بیت کی تشہیر و تبلیغ کے لیے، ہم سارا زور لگا دیتے ہیں ان علماء کی توہین و جسارت کرنے میں. وہ علماء کرام جنہوں نے اپنی ساری زندگی، ان کو کچھ نہیں چاہیے آپ لوگوں سے، یہ میں بتا دوں، میں ان کی وکالت میں، اگرچہ مجھے انہوں نے کوئی وکالت نہیں دی ہے، لیکن میں ان کی وکالت میں یہ کہہ دوں کہ وہ اپنے مقلدین سے یا وہ علماء کے جو جن کے یہ ماننے والے ہیں ان سے ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو صرف خدا اور اہل بیت علیہ السلام سے اجر چاہیے، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ علماء کہ جن میں سب سے پہلے میں نے شیخ یعقوب کلینی کا نام لیا، 20 سال انہوں نے خیر باد کر دیا اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ کیونکہ شیخ یعقوب کلینی کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام زمانہ کی غیبت
अभी हुई है और गैबत सुगरा का जमाना है। गैबत सुगरा जो 29 साल का जमाना है, 29 साल का जो जमाना, जो गैबत सुगरा का जमाना है, शेख याकूब कोलैनी उस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इन्होंने अज़्म किया, इन्होंने इरादा किया, किस चीज का इरादा किया, इन्होंने ये इरादा किया कि उलूम अहले बैत जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उलूम अहले बैत जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये खुद रहते हैं रे शहर में, इनका मकबरा शहरे रे में है जाहिरन, लेकिन ये रहते थे शहरे रे में, शहरे रे तेहरान के साथ जहां पर मोमिनी ने ज्यारत की होगी दूसरे इमाम के फर्जंद शाह अब्दुल अजीम, शहरे रे में आप लोगों ने ज्यारत की होगी शाह अब्दुल अजीम, अजीमुशान फर्जंद इमाम अलैहिस्सलाम हैं, ये उस इलाके में जिंदगी गुजारते। लेकिन इन्होंने अपने घर को खैर बात किया 20 साल के लिए, क्यों? इसलिए कि वो उलूम अहले बैत जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में, जहां पे उन्हें पता चला कि कोई रावी वहां पर शहर नेशापुर, शहर नेशापुर का है जो तेहरान से मशहद अगर आप जाएं तो रास्ते में एक शहर आता है नेशापुर, जहां पर आप जाहिर ज्यारत वगैरह के लिए भी जाते हैं, अगर इन्हें पता चला कि वहां पर बाज साहबिए आइमा अलैहिस्सलाम हैं कि जिनसे रिवायात अहले बैत मिल सकती है, इन्होंने वहां से ली। इन्हें पता चला कि कूफे में, देखिए आज अगर तेहरान से मशहद अगर सफर किया जाए तो आज लग्जरी बस में भी तकरीबन 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, आज की तमाम सहूलत के बावजूद, उस जमाने को आप तसव्वुर करें। ये शख्स वहां जाते हैं, इन्हें पता चला कि करबला और कूफा और नजफ में कोई शख्स है कि जिसके पास जो साहबी मासूम है और उसके पास कुछ रिवायात है, वो वहां से सफर करते हैं, वहां पर जाते हैं और रिवायत को हासिल करते हैं। ये 20 साल की उनकी खिदमत कि जिसका नमूना हमारे सामने जो आया वो उसूल काफी और फुरू काफी की शक्ल में, ये उसूल काफी और फुरू काफी, ये कोई मामूली किताब है? हमने तो कुरान का वो एहतराम नहीं किया, वक्त बहुत ज्यादा हो गया बस, लेकिन ये बात जरूरी कि अपने इख्तिताम तक पहुंचा दूं। हमने तो कुरान का एहतराम भी नहीं किया, बिलखसूस अपने नौजवानों से मेरी खसूसी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग कुरान का एहतराम किया करते थे, खुदा रहा उस एहतराम को बरकरार कीजिए। आज नौजवान ये कहता है कि भाई इसकी तौहीन तो नहीं हो रही ना, इसकी जसारत तो नहीं हो रही है, कभी कहां रख दिया कभी कहां रख दिया, हमने तो कुरान का वो एहतराम भी बाकी नहीं रखा। ये उसूल काफी और फुरू काफी का एहसास हम हो ही नहीं सकता है, हमें क्या एहसास होगी? रिवायत मासूमीन अलैहिस्सलाम को जमा करके रख दिया, लेकिन हमारे ये उलमा जो बाद के उलमा वो जानते हैं शेख याकूब कोलैनी ने क्या अजीम काम किया, शेख याकूब कोलैनी ने क्या अजीम काम किया, खुद ये काम कितना अजीम है और ये रिवायत कितनी अजीम है। हमारे उलमा का तरीके कार ये रहता है कौन है इस मजमे में, बल्कि मैं बहरहाल क्या गारंटी के साथ कोई बात कहूं, मेरी तरीके कार ये नहीं होता, इंशाल्लाह आप सभी ये होंगे, लेकिन कितने ऐसे नौजवान हैं कि जिनका ये तरीके कार हो कि कुरान बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाते। आज नौजवान कुछ मसाइल जानने के बाद ये कहता है कि भाई कुरान के अल्फाज को हाथ लगाना हराम है, बाकी कुरान को हाथ लगाना बगैर वुजू के हराम नहीं है। अरे क्या शरीयत में फकत हराम ही रह गया है? शरीयत में फकत वाजिब ही है कि जिसकी हम, अगर कि ये तो खुदा के वाजिब आदेश, इसकी मैं जसारत नहीं कर रहा, ये तो जरूरी है ही, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं कि फकत आखिरत नहीं, क्योंकि आखिरत पर तो हमारा कोई ईमान नहीं है, दिल से नहीं कहते जबान से नहीं कहते, लेकिन हमारा तरीकेकार तो यही है, आखिरत में हमारा कोई ईमान नहीं है, लेकिन दुनिया में जो कामयाबियां हैं, दुनिया में जो इंसान आज महसूस करता है कि तौफीकात सलब हो गई, आज माल में बरकत नहीं हो रही है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, वो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये वो छोटी छोटी कोताहियां हैं जो कभी हमने कलाम अहले बैत से की और अब हमारी बात यहां तक पहुंच गई कि अब कुरान के मुकाबले में हमारी ये जसारत होने लगी। भाई कुरान को बगैर वुजू के हाथ लगाना तो कोई हराम नहीं है, कोई वाजिब तो नहीं है कि कुरान को वुजू के साथ हाथ लगाया जाए, बगैर वुजू के कुरान को हाथ लगाया जा सकता है, लेकिन कुरान तो दूर की बात है। हमारे उलमा का यह तरीकेकार रहा है कि उसूल काफी और फुरू काफी जो मजमुआ है रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम का, मजमुआ है रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम को, इसको बगैर वुजू के हाथ ही लगाते हैं। यह है शेख कुलैनी का काम। यकीन अब हदीस मासूमीन का असर है तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाकी रिवायत बाकी की कुतुब रिवाई में वो असर अहले बैत का असर अपने मकाम पर, लेकिन मुअल्लिफ मुसन्निफ का जो कलम का असर है वो भी अपने मकाम पर, उसकी भी एक हैसियत है। शेख अब्बास कुम्मी आलल्लाहु मकामहु, कौन है? साहिब मफाजुल जिनान, साहिब मफाजुल जिनान। ये फुरूए काफी उसूल काफी की कदर को जानिए जरा, इसलिए कि ये वो अजीम इंसान थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी उलूम अहले बैत के लिए। खुदावंद मुताल ने उनके कारनामों को जो आखिरत में रिजल्ट दिया, जो आखिरत में खुदा उसका नतीजा और अजर देगा, हमें क्या मालूम, लेकिन हमें यह मालूम है कि बहुत ही अजीम होगा। लेकिन खुदावंद मुताल ने इस मुखलिस इंसान को इस दुनिया में क्या अजर दिया, इस मुखलिस इस इंसान को कि जिसकी कोई ये नीयत नहीं थी, जिसका कोई ये इरादा नहीं था कि लोग वाह वाह करें, लोग 1429 के मजलिस में उनका तस्किरा करें और लोग सुभान अल्लाह कहें, उनकी नीयत में ये इस किस्म का कोई इरादा नहीं, लेकिन खुदावंद मुताल ने उनके कलम में ये असर दिया, ये असर दिया कि शेख अब्बास कुम्मी आलल्लाहु मकामहु कि जो इरफान और मानवियत के खुद अपने एक मकाम पर पाई है कि इनकी खिदमत, बहरहाल उसके लिए पूरा एक घंटा चाहिए कि शेख अब्बास कुम्मी के फजाइल आपकी खिदमत में बयान करूं, लेकिन ये वो अजीम उलमा है। शेख अब्बास कुम्मी की बीनाई, शेख अब्बास कुम्मी की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। खुद इनका फर्जंद नकल करता है, वाकई बहुत तूलानी है, लेकिन सिर्फ इख्तिसार के साथ, शेख अब्बास कुम्मी की आंखों की बीनाई जाहिल हो रही है, जा रही है, इनकी बीनाई वापस पलटी तो किस तरीके से पलटी, इस अंदाज से पलटी कि एक रोज इनका फर्जंद ये कहता है कि जब मैं दर्द के लिए गया तो उस वक्त उनके मेरे बाबा की आंखों में दर्द हो रहा था, बीनाई जा रही थी, जब मैं दर्द से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बाबा यानी शेख अब्बास कुम्मी बड़े आराम के साथ जो उनका पहले तरीकेकार था उस अंदाज से अपने काम में मशगूल है, लिखने के काम में मशगूल है। मैंने घबरा कर कहा कि आपकी आंखों में तो इतना शदीद दर्द हो रहा था, आखिर ये दर्द किस तरीके से जाहिल हो गया? इन्होंने कहा कि जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये उसूल काफी और फुरू काफी को मैंने अपनी आंखों से लगाया। इंसान देखिए, आज हमने सुनने के बाद ये आंखों से लगाने, ये दिल में उतरनी चाहिए ये चीज, जब दिल में उतरेगी इसकी कदर, जब दिल में उतरेगी इसकी मंजिलत, जब दिल में उतरेगा इसका एहतराम, तो उसके आसार हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकेंगे। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा लिया, इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये शेख अब्बास कुम्मी अपनी खोई हुई बीनाई वापस ले रहे हैं उसूल काफी और फुरू काफी को अपनी आंखों से लगाकर। और ये तो शेख अब्बास कुम्मी शेख याकूब कुलैनी का एक नमूना हमने आपकी खिदमत में बयान किया। अब यकीन जानिए, अगर आप मुझे काबिल भरोसा इंसान समझते आप यकीन जानिए, हमारा हर आलिम शेख याकूब कुलैनी से लेकर आज तक, हमारा हर मर्जे सुबह से शाम तक, अगरचे शेख याकूब कुलैनी ने जिस्मानी तौर पर अपने घर को खैरबाद किया था, लेकिन हमारे हर मर्जे ने हमारे हर मुश्तहिद ने, हमारे हर मुफस्सिर ने, हमारे हर मुअर्रिख ने, हमारे हर वो शख्स के जो मुहाफिज़े विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम है, उसने अपने घर को जिस्मानी तौर पर तो खैरबाद नहीं किया शेख याकूब कुलैनी की तरह, लेकिन अपनी सारी जिंदगी के लिए, अपनी सारी जिंदगी अपने घर वालों को खैरबाद किया उलूम अहले बैत के तहफ्फुज के लिए, उलूम अहले बैत जाया ना हो जाए, उलूम अहले बैत यतीमान अहले बैत तक पहुंच जाए। कौन है यतीमान अहले बैत? रिवायतों के मुताबिक हम हम जो शियाने अहले बैत अलैहिस्सलाम है, रिवायतों में ये कहा गया कि हमारे उलमा हमारे यतीमों की किफालत करने वाले, हम यतीमान अहले बैत अलैहिस्सलाम है। इन यतीमान अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ किया, जिसका नतीजा ये निकला। और ये जिस तरीके से उसूल काफी के जो मुश्तमिल है काविशे याकूबे को लेने की और अहादीसे मासूमीन अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से हमारे उलमा में ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं। अल्लामा बुरुजर्दी, बहुत ज्यादा वक्त हो गया, बस ये जरा एहसास करें कि हम कहां बैठे हुए हैं, हम कहां बैठे हुए हैं। ये कोई मामूली फर्श नहीं है, ये कोई मामूली मजलिस नहीं है, ये मजलिस हुसैन है, ये फर्श अजा है। ये इस पर बैठने वाले लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। बाद ऐसे मोमिनीन होंगे जो घर में बैठे मजलिस को सुन रहे होंगे, बाज मोमिनीन होंगे जो टीवी पे मजलिस को सुन रहे होंगे। खुदा सबको अजर दे, शहजादी कौनैन सैयद शहदा सबको अजर सवाब देने वाले हैं। लेकिन सफ़े अजा पे आना, सफ़े अजा पर आना, इसकी अपनी वो बरकत है कि जो घर में बैठकर हासिल नहीं हो सकती है। ये मैं जज्बाती जुमला नहीं कह रहा हूं, वो रिवायतों के मजमुओं से नतीजा निकाल के बयान कर रहा हूं कि जिसका मुताला किया, अभी वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं उन तमाम रिवायतों को बयान करूं कि आजादारी सैयद शहदा क्या चीज है। जवानों से ख्वाहिश है, दरख्वास्त है, वो आजादारी की जो चली आ रही है उसको बरकरार रखिए, उसमें राय के दाने के बराबर किसी किस्म की कोई कमी ना की जाए। बस आजादारी में एक चीज का सिर्फ ख्याल रखें, वो ये है कि किसी किस्म का कोई हराम काम ना हो और कोई वाजिब ना छूटे, बस। बाकी जो इंसान जिस अंदाज से आजादारी कर सकता हो, ये याद रखिएगा, कोई शख्स भी कमा हक्कहू, जैसी आजादारी सैयद शहदा करनी चाहिए, किसी इंसान के दिल में यह ना है कि हां हमने आजादारी सैयद शहदा कर ली, ये मुमकिन नहीं है। ये आजादारी और आजादार शेख अब्बास कुम्मी के आंखों का दर्द वापस पलट आया, अल्लामा बुरुजर्दी ये कहते हैं। 88 इयर्स उम्र की उन्होंने, लेकिन मरते दम तक उनको ऐनक की जरूरत नहीं रही। और जब इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान को ऐनक की हाजत है, बिलखुसूस वो इंसान जिसकी सारी जिंदगी पढ़ने और लिखने से सारी जिंदगी गुजरी हो। एक दफा कहते मैं बुरुजर्द में था, शिद्दत के साथ आंखों में दर्द हुआ, बीनाई आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तभी वो इलाज से मना कर दिया, मायूस हो गए, तभी उन्होंने कहा कि अब आपकी आंखों का कोई इलाज नहीं हो सकता है। अल्लामा बुरुजर्दी मायूस, मायूस इस सेंस में कि तबीबों से तो अब उम्मीद मुनकते हो गई। मुहर्रम आया, आशूर का दिन आया, अल्लामा बुरुजर्दी कहते हैं कि तरीकेकार यह था कि जितनी भी अंजुमन शहर बुरुजर्द की थी वो हमारे घर आया करती थी, मातम करते हुए, मातम आजादारी करती थी, उसके बाद चले जाती थी। इसी तरीके से एक अंजुमन आई, बस मैं मातम हुसैन में मशगूल था, आंखों से आंसू जारी थे, और अचानक मुझे इल्हाम हुआ, एक वो इल्हाम जो शेख अब्बास कुम्मी को हुआ कि उसूल काफी को अपनी आंखों से लगाया। ये ऐसे ही नहीं है, ये खुदावत मुताल का इल्हाम है। क्यों हमें और आपको ऐसा इल्हाम नहीं होता है? उसके लिए जरफियत चाहिए, शख्सियत चाहिए, उस वो मकाम चाहिए। इंसान अपने अंदर वो इजाद करे, अहले बैत से अपनी मोहब्बत, अहले बैत से अपने ताल्लुक को बढ़ाइए। ये मोहब्बत जो बुजुर्गों में थी, नाम हुसैन आता था आंखों से आंसू बह जाते थे। आज हमारे नौजवान रिवायत मसाय की रिवायत सुनता है, सोचता है नहीं, नहीं मालूम ये रिवायत सही है सही नहीं है। हुसैन का नाम ही मसाइब में काफी इंसान को रोलाने के लिए। अल्लामा बुरुजर्दी आयतुल्लाह उज़्मा अगर बुरुजर्दी कहते हैं इस तरह अंजुमन आ रही थी, मेरे दिल में इल्हाम हुआ। क्या इल्हाम हुआ? ایران عراق کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عزادار ایک مٹی کو پانی میں ملا کر ایک گارا سے بنا کر ان کے ماتھے پر سر پر اور رخساروں پر ملتے ہیں. یہ عزادارہ نے سید الشہداء وہاں پہ عزاداری کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ظاہر انسان خاک اپنے چہرے پر ملتا ہے, اظہار حزن و غم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اپنے نوجوانوں سے ایک خواہش, نوجوانوں سے نہیں عزادار سید الشہداء سے ایک خواہش. یہ کالا لباس علامت عزاداری ہے, کوشش کریں ان ایام میں کالا لباس پہنیں. اور یہ کسی عامی کی کسی عالم کی سنت نہیں ہے بلکہ روایت کا جملہ ہے, سیدہ طاہرہ سلام علیہا کی سنت ہے. کالا لباس پہنیے, لوگ دنیا کو پتا چلے کہ یہ قوم آزادار ہے. دو مہینے آٹھ دن اگر ممکن ہو, دو مہینے آٹھ دن کالا لباس پہنیے. اپنے آفس میں جائیے, اپنے دفتر میں جائیے, اپنے کام پر جائیے, اپنی دکان پر جائیے, کالا لباس علامت ہے کہ ہم آزادار سید الشہداء ہیں. اور دوسری خواہش اگر ممکن ہو کہ جب جلوس میں شرکت کرے, جب جلوس میں شرکت کرے تو کوشش کرے برہنہ پا شرکت کرے. یہ اب تفصیل کا وقت نہیں, آیت اللہ العظمیٰ آگے وحید خراسانی کی بھی خواہش ہے دوسرے انداز سے. اور ہمارے جید علماء سید مہدی بحر العلوم نے اپنے زمانے کے امام کو اس طریقے سے جلوس میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے. عزاداری, انسان یہ تصور نہ کرے ہم نے عزاداری کر لی, ممکن نہیں ہمارے لیے عزاداری کرنا. علامہ گروچردی کہتے ہیں حیات انجمن آ رہی تھی, بس میرے دل میں ایک الہام ہوا, وہ خاک جو عزادار کے ماتھے پہ لگی ہوئی تھی یہ خاک خاک تربت, یہ تربت حسینی نہیں ہے, یہ خاک خاک حسینی نہیں ہے. وہ خاک حسینی, تربت حسینی تو وہ کربلا کی مٹی کو ہم کہتے ہیں, یہ تو ایک عام سی خاک تھی جو اگر ماتھے عزادار پر نہ ہوتی, اگر عزادار کے ماتھے پر نہ ہوتی تو ہمارے قدموں کے نیچے ہوتی. لوگ کہتے ہیں ان علم کا احترام کیوں کریں, ہم ان علم کی زیارت کیوں کریں, ہم ان تابوت کی زیارت کیوں کریں, ہم ان جھولوں کی زیارت کیوں کریں, ہم ان ذوالجناح کی زیارت کیوں کریں. ارے جو چیز بھی حسین اور اہل بیت سے منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہوا کرتی ہے, وہ قابل احترام ہوا کرتی ہے. یہ خاک عام سی خاک تھی, معمولی سی خاک تھی, لیکن اس کا معجزہ ملاحظہ فرمائیں گے, اس کی تاثیر کو ملاحظہ فرمائیں گے. یہ ایک عام سی خاک تھی لیکن جب عزادار سید الشہداء کے ماتھے پر لگی, علامہ بروجردی کہتے میری آنکھوں کا درد اپنے عروج پر تھا, شدت کے ساتھ میری آنکھیں درد ہو رہی تھی, مجھے الہام ہوا, میں نے اس خاک کو, ایک مختصر سی خاک کو لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا, سارا کا سارا درد فوری ختم ہو گیا, فوری ختم ہو گیا. یہ الہام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مولا اپنے آقا کے ساتھ اس ارتباط کو برقرار کرے, اس محبت کو بنائیں, اس محبت کو ایجاد کریں. کون ہے حسین, کون ہے حسین؟ وہ حسین کہ جس پر یہ رونا, روایت کا جملہ ہے, یہ انسان کوشش کرے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے کی کوشش کرے. روایت کا جملہ ہے یہ جو عزادار کی آنکھوں سے سید الشہداء کی شہادت پہ جو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے, فرشتے آ کر انہیں محفوظ کر لیتے ہیں, فرشتے آ کر انہیں محفوظ کر لیتے ہیں. یہ روایت کا جملہ ہے کہ جو شہزادی کونین نے بیان کیا. ایک روز سید سجاد نے زینب کبریٰ سے کہا, اے زینب کل جو تم نے خواب دیکھا اس کو بیان کرو. زینب کبریٰ نے کہا سید سجاد آپ تو جانتے ہیں. سید سجاد نے کہا بے شک ہم جانتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ خواب تمہاری زبانی سنوں تاکہ اپنے بابا کا ماتم کروں. زینب کبریٰ کہتی ہے میں رات کو سوئی, میں نے کیا دیکھا, شہزادی کونین میرے خواب میں آئی ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, سیاہ لباس پہنا ہوا ہے.
अपने बालों को हुसैन के खून से रंगीन किया हुआ है। ज़ैनब कुबरा कहती है, जब मैंने अपनी माँ का माँ की ये कैफियत देखी, अपने आप को शहजादे कौनैन पर गिरा दिया। ज़ैनब शहजादे कौनैन कहती है, ज़ैनब कुबरा जब तुम्हारा कारवान मदीने से चला, मैं बकी से चली। ज़ैनब कुबरा, अरे भूल गई उस वक्त को जब शबे आशूर थी मैं बैन कर रही थी, वाह हुसैना तुमने उम्मे कुलसूम से कहा मैं अपनी अम्मा की आवाज को सुन रही हूँ। ज़ैनब कुबरा भूल गई उस वक्त को कि जब हुसैन तुमसे गुफ्तगू कर रहा था, मैं खैमों के गिर्द चक्कर लगा रही थी, अपने बेटे हुसैन का मातम कर रही थी। हुसैन ने कहा ज़ैनब अपनी अम्मा की आवाज को नहीं सुनती। ज़ैनब कुबरा, मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ थी जब सहाबियों असहाब के असहाब बावफा असहाब के लाशें आ रहे थे, मैं तुम्हारे साथ थी। अकबर का लाशा आया, मैं तुम्हारे साथ थी। काशिर कासिम का लाशा आया, मैं तुम्हारे साथ थी। अरे मैं उस वक्त भी थी जब हुसैन जमीने करबला पर लेटे हुए हैं, शिमर सीने पर सवार है, खंजर को हुसैन की गर्दन पे रखे हुए, अरे हुसैन का सर मेरी गोद में था, हैरान और परेशान थी, अचानक देखा नौके नेजा पे हुसैन का सर। हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिनको रोते हुए जब रसूल ने देखा, फातिमा से कहा हुसैन को खामोश कर दो, अरे इसका रोना मुझे रुला देता है, इसका रोना मुझे अजियत पहुंचाता है। एक रोज शहजादी कौनैन, हाय हुसैन कमसिन थे, जारो कतार रो रहे हैं, शहजादी खामोश करा रही है, चुप करा रही है, अरे दिल बहला रही है, लेकिन आज हुसैन का रोना बड़ा अजीब रोना है, किसी तरीके से हुसैन को आराम नहीं आ रहा। अरे शहजादी कौनैन घबरा कर खड़ी हुई, चादर इस्मत को ओढ़ा, मस्जिद नबवी की तरफ चली। इब्ने अब्बास कहते हैं फातिमा जहरा को आते देखते ही हम सारे असहाब चल पड़े, हमने रसूल और अली को तना छोड़ दिया, और जब रसूल ने शहजादी कौनैन को आते देखा, रसूल की आंखों से आंसू बहने लगे, रसूल की आंखों से आंसू जारी होने लगे। जैसे ही शहजादी कौनैन नजदीक पहुंची, रसूल ने जल्दी जल्दी अपनी आस्तीनों से अपनी आंखों को पोंछा। उसके बाद शहजादी कौनैन बड़ी जलाल में है, कहा ऐ बाबा, पहले तो सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ बाबा मेरा सलाम लीजिए। चाहने वाली बेटी ने सलाम किया, बाप की तरफ से जवाब आया अलैकी सलाम या फातिमा, ऐ बेटी मेरी तरफ से तुम पर सलाम हो। उसके बाद बस बगैर किसी मुकदमे के शहजादी कौनैन ने कहा अरे आपने मेरे हुसैन को क्यों अफसरदा कर दिया, अरे वो हुसैन जो हमें वो रसूल जो हमेशा से हुसैन को हंसता देखना चाहते हैं। अजीब सवाल है, शहजादी का अजीब सवाल है, ऐ बाबा किस वजह से आपने हुसैन को अफसरदा कर दिया, क्या ऐ रसूल आपने नहीं फरमाया हुसैन ज़ैनु समावात वल अर्ज़, हुसैन जमीन और आसमान की जीनत है, क्या रसूल आपने नहीं फरमाया अशुम्मो रायत जन्ना मिनल हुसैन, क्या आपने नहीं फरमाया मैं हुसैन से जन्नत की खुशबू को सूंघता हूँ। अरे रसूल घबरा गए, मैंने ये सब कुछ कहा लेकिन फातिमा आखिर मसला क्या है, शहजादी कौनैन फरमाती है ए बाबा ये बतला दीजिए आपने क्यों हसन को उस अंदाज से प्यार किया, हुसैन को उस अंदाज से प्यार ना किया। बस रसूल ने ये सुनना था अजीब जुमला का, हाजा सिरुन खाफुन, ऐ शहजादी ऐ फातिमा ये एक राज है, मैं डरता हूँ अगर तुमने सुन लिया तुम्हारी जिंदगी तलख हो जाएगी, तुम्हारा दिल टूट जाएगा।
बस शहजादी कौन ने ये सुना, कहा ए बाबा आपको खुदा के हक का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता, आपको आपके हक का वास्ता, मुझे बताइए आखिर इसका राज क्या है। बस रसूल ने ये सुना अजीब जुमला का, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुमने सवाल किया, मैंने हसन को उस अंदाज से प्यार किया, हुसैन को उस अंदाज से प्यार क्यों ना किया? सुन लो, अखबरनी जबराइल मिन रब्बी जलील, खुदावंदे मुताल की जानिब से जिब्राइल ने मुझे खबर दी अम्मल हसन, हसन को जहर देकर शहीद किया जाएगा, अम्मल हुसैन फयमूतु मनहूरन बिसैफी शैम, अरे हुसैन को शिमरे लईन अपनी तलवार से ज़िबह करेगा। बस शहजादी ने सुना रिवायत का जुमला है, बगत बुकाल आलिया लतमत वजा हसत तुराब आला रासिया, बस ये सुनना था। अरे शहजादी ने बुलंद बुलंद आवाज से रोना शुरू किया, अपने मापने चेहरे पर तमाचे मारना शुरू किए, मदीने की खाक को लेकर अपने सर पर डालती जाती, वाह हुसैना कहती जाती। शहजादी, शहजादी ने जब ये सुना हुसैन को मजलूमियत के साथ ज़िबह किया जाएगा, फौरन तड़प कर एक जुमला कहा, बाबा ये बता दीजिए मेरे बेटे के साथ ये जुल्म मदीने में होगा या किसी और मकाम पे होगा? रसूल ने कहा कतलू हो अचानन गरीबा, अरे तुम्हारे हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा आलम गुर्बत में कत्ल किया जाएगा, वह यकून और तुम्हारा बेटा पुकार रहा होगा अमामिन मुजीरिन युजीरोना अमामिन नासिरिन यंसुरोना, अरे कोई है जो इस हजरत हुसैन मजलूम को बना दे, अरे कोई नहीं जो हुसैन की मदद को आए। रिवायत का जुमला सुनेंगे, रिवायत का जुमला सुनेंगे, यहां तक रसूल ने पहुंचाया, उसके बाद बस आखिरी जुमला, रिवायत का आखिरी जुमला, रिवायत बहुत तूलानी है लेकिन आखिरी जुमला जरा सुन लीजिए, रिवायत का जुमला है युज़बहु ज़िबहा शातेन, अरे हुसैन को गोसबन की तरह ज़िबह किया जाएगा। बस ये सुनना था फातिमा ने कहा वाह हुसैना वाह वलदा, ए बेटा ए हुसैन, हाथ जोड़ के कहूंगा रसूल में ताकत नहीं मसाइब को बयान कर सके, फातिमा में ताब नहीं इसको बर्दाश्त कर सके, हाथ जोड़ के कहूंगा ए नाए रसूल ए फातिमा जहरा, आपको बयान करने की ताकत नहीं, आपको सुनने की ताब नहीं, जरा करबला आई है दुखियारी बहन ज़ैनब कुबरा, अरे टीले पे खड़ी है कभी दरे खैमे पर जाती है कभी टीले पर आती है, भैया को देख अरे शिमर ज़िबह कर आए सर ज़ैनब मदीने का रुख नाना रसूल अल्लाह, अरे आपका हुसैन ज़िबह हो गया कोई नहीं जो हुसैन की मदद कर, वाह मोहम्मदा वालिया वाह फातिमा आए ज़ैनब को कोई सहारा दो, ज़ैनब गरीब ज़ैनब। बारेला हमारी इबादत को कबूल फरमा, बारेला हमारे इस रोने को जरिया मगफिरत करार दे, खुदावंदा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खुदावंदा हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, खुदावंदा इस दुनिया में हमें ज़ियारत हुसैन नसीब फरमा, कयामत के दिन शफात हुसैन नसीब फरमा, और कयामत के दिन हमें हुसैन के साथ महशूर फरमा, हमारे मरहूमीन को
اہل بیت اور حسین کے ساتھ محشور فرما. خداوندہ جو حج و زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خداوندہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. خداوندہ تمام مومن و مومنات کو بالخصوص ان ایام عزا میں اور بالعموم تمام ایام میں ان مومن و مومنات کی جان و مال کی حفاظت فرما. خداوندہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
کوئی نہیں پڑھانا.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. السلام علیک یا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائک. علیک منی سلام اللہ ابد ما بقیت وبقی اللیل والنہار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مولانا الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقضاء والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور